अध्याय 27 मापनी प्रविधियाँ स्केलिंग टेक्निक्स मापनी विधि के अर्थ एवं प्रकार मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ स्केलिंग मेथड मनोवैज्ञानिक मापन तथा शैक्षिक मापन में मापनी विधियों का विशेष असमियत माना गया है। मापनी को कुछ ज्ञात गुणों के आधार पर कुछ भागों में छांटकर उसका परिमाणात्मक विश्लेषण किया जाता है। जब इन विधियों का प्रयोग सफलतापूर्वक छांटने के कार्यों के लिए किया जाता है तो इससे अपने आप ही एक तरह का सात्विक कंटिन्यूम उत्पन्न हो जाता है जिसे मापनी की संज्ञा दी जाती है। प्रचेंज मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोधों में मापनी विधियों के मुख्य दो प्रकार बतलाए गए हैं। क मनोदैहिक मापनी विधियाँ साइकोफिजिकल स्केलिंग मेथड, ख मनोवैज्ञानिक मापनी विधियाँ साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड। इन दोनों प्रकार की मापनी विधियों का विस्तृत वर्णन तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाली उपविधियों का वर्णन हम अलग अलग अनुच्छेदों में करेंगे। मापनी के उद्देश्य पर्पस ऑफ स्केलिंग। जैसा कि हम जानते हैं मनोवैज्ञानिक मापनी में उन गुणों या विशेषताओं का मापन स्केलिंग पद्धति से किया जाता है जिसका स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है तथा जिसके लिए कोई भौतिक मापनी उपलब्ध नहीं होता है। जैसे ईमानदारी का मापन हम मनोवैज्ञानिक मापनी का उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक मापनी के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं। एक, मनोवैज्ञानिक मापनी द्वारा अमूर्त विशेषताओं का मापन होता है। दो, मनोवैज्ञानिक मापनी का एक उद्देश्य व्यक्ति के भाव एवं प्रत्यक्षण को एक वस्तुनिष्ठता प्रदान करना होता है। तीन, मनोवैज्ञानिक मापनी से मनोवैज्ञानिक गुणों का सांख्यिकीय विश्लेषण संभव है, फलस्वरूप प्राप्त परिणाम को सामान्यकृत आसानी से किया जा सकता है। तीन, विभेदक सीमांत। यदि भिन्न भिन्न तीव्रता स्तर के दो एक ही तरह के उद्दीपक को व्यक्ति के सामने रखा जाए तो व्यक्ति तब तक इन दोनों के अंतर डिफरेंस का प्रत्यक्षण नहीं कर पाएगा जब तक इन दोनों उद्दीपक के तीव्रता स्तर में एक न्यूनतम अंतर हो। जैसे यदि किसी व्यक्ति के सामने 15 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर की दो रेखाएं बारी बारी से रखकर यह पूछा जाए कि उसमें से कौन बड़ी है या कौन छोटी है तो इस बात की संभावना अधिक है कि वह इस अंतर को नहीं बता पाएगा। किंतु जब एक रेखा की लंबाई बढ़ाकर 25 सेंटीमीटर कर दी जाती है तब यह संभावना है कि इस बार वह बड़ी रेखा की पहचान करने में समर्थ हो जाए। स्थूल रूप से रफली इसी को मनोभौतिकी में विभेदक सीमांत कहा जाता है। किसी भी दो उद्दीपकों का डीएल ज्ञात करने के लिए उन दोनों उद्दीपकों की तीव्रता स्तर में कम से कम परिवर्तन करके घटाया या बढ़ाया जा सकता है और व्यक्ति को इसका प्रत्यक्षण करने को कहा जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि ऐसे कई प्रयासों में से कुछ में तो व्यक्ति तीव्रता स्तर में किए गए परिवर्तन का प्रत्यक्षण कर लेता है परंतु कुछ प्रयासों में वह असफल रहता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि दोनों उद्दीपकों के तीव्रता स्तर में अधिक अंतर होने पर वह स्पष्टतः इसका प्रत्यक्षण कर लेता है। इन दोनों सीमाओं अर्थात कम से कम अंतर तथा अधिक से अधिक अंतर के बीच एक ऐसा भी तीव्रता स्तर होता है जिसका व्यक्ति के प्रत्यक्षण में अंतर स्पष्ट होगा और व्यक्ति जिसका ठीक 50% प्रयासों में प्रत्यक्षण करेगा तथा 50% प्रयासों में प्रत्यक्षण नहीं करेगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ने इसी उद्दीपक अंतर को डीएल की संज्ञा दी जाती है। विभेदक सीमांत डिफरेंशियल लेमेन को न्यूनतम श्रेय भेद जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस या GNDV कहा जाता है। GND से संबंध एक दूसरा संप्रत्यय कॉन्सेप्ट है जिसे न्यूनतम अवकीय भेद जस्ट नॉट नोटिसेबल डिफरेंस या JNND कहा जाता है। कुछ लोगों ने जस्ट नॉट नोटिसेबल डिफरेंस को जस्ट अननोटिसेबल डिफरेंस भी कहा है, और तब इसका संक्षिप्त रूप जे यू सी हो गया है। जनन जी एन एन टी से तात्पर्य दो उद्दीपकों के बीच उस अधिकतम अंतर से होता है जिसका व्यक्ति प्रत्यक्षण नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण काल्पनिक है, 1000 वॉट के 10 बल्ब को एक छोटे से कमरे में यदि जला दिया जाए और उसी कमरे में एक 25 वॉट भी बल्ब जला दिया जाए, तो संभव है कि व्यक्ति 25 वॉट के बल्ब की रोशनी तथा अन्य 10 बल्बों की रोशनी में अंतर का प्रत्यक्षण करे ही नहीं, अर्थात उसे नज़र ही नहीं पड़े कि कमरे में 25 वॉट का बल्ब जल रहा है। इसी तरह से यदि सूर्य की रोशनी में 25 वॉट का बल्ब जला दिया जाए तो अधिकतर व्यक्ति बल्ब की रोशनी तथा सूर्य की रोशनी के इस अधिकतम अंतर का प्रत्यक्षण नहीं कर पाएंगे, अर्थात उन्हें 25 वॉट का बल्ब जलता नजर आएगा ही नहीं। डीएल तथा आरएल रीज लेमन के उपयुक्त वर्णन से इन दोनों में एक तात्विक अंतर का पता चलता है, जो एक प्रकार है। आरएल किसी भौतिक उद्दीपक पर एक बिंदु है जिसका 50% प्रयासों में प्रत्यक्षण किया जाता है। डीएल एक बिंदु नहीं होता है बल्कि एक प्रसार होता है जिसमें दो उद्दीपकों के अंतर को 50% प्रयासों में प्रत्यक्षण किया जाता है। 4 आत्मपरक समता बिंदु। आत्मपरक समता बिंदु मनोभौतिक प्रयोगों में व्यवहारित होने वाला एक प्रमुख संप्रत्यय है। जब भी व्यक्ति किसी बाह्य उद्दीपक का आकलन करता है तब उनके प्रेक्षण में कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य ही हो जाती हैं। अक्सर व्यक्ति उद्दीपक का अधिप्राकलन करता पाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक बाह्य उद्दीपक मान के लिए व्यक्ति के मन में उसके बराबर का एक दूसरा उद्दीपक मान होता है। जैसे मूलर लॉयर भ्रम में जब व्यक्ति पंख रेखा की तीर रेखा की लंबाई के बराबर करता है तब वह अपने मन में पंख रेखा की लंबाई को इस प्रकार घटाता बढ़ाता है जो उसे ठीक तीर रेखा की लंबाई के बराबर लगता है। सच्चाई यह है कि व्यक्ति द्वारा बनाई गई पंख रेखा की वास्तविक लंबाई कभी तो तीर रेखा की लंबाई से बड़ी है और कभी छोटी होती है, फिर भी पंख रेखा व्यक्ति को तीर रेखा की लंबाई के बराबर लगती है। इस तरह व्यक्ति पंख रेखा की एक खास लंबाई को आत्मगत रूप से सब्जेक्टिवली तीर रेखा की लंबाई के बराबर समझता है। इसे ही मनोभौतिकी साइकोफिजिक्स में आत्मपरक समता बिंदु पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी ऑफ PSE कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। मनोभौतिकी के उपयुक्त महत्वपूर्ण संप्रत्ययों की जानकारी हो जाने के बाद अब प्रमुख मनोदैहिक मापनी विधियों का वर्णन अपेक्षित है। इन विधियों का वर्णन निम्नांकित है। क सीमा विधि। सीमा विधि एक प्रमुख मनोदैहिक विधि है जिसे अन्य नामों जैसे न्यूनतम दोष गीय भेद विधि, नोटिसेबल डिफरेंस या न्यूनतम परिवर्तन विधि, क्रमिक खोज विधि भी कहा जाता है। इस विधि का नामकरण क्रेपलिन द्वारा 1891 में किया गया था। इसे निम्न विधि का नाम उन्होंने इसलिए दिया था कि उद्दीपकों की श्रृंखला वहां पर समाप्त मानी जाती है जब व्यक्ति या प्रयोज्य एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाता है जब वह अपने निर्णय में परिवर्तन कर देता है। इन विधि में आरएल तथा करने ज्ञात करने में उद्दीपक के मान में अलमत परिवर्तन करते हुए उसे क्रमबद्ध रूप से सिस्टमैटिकली घटाया या बढ़ाया जाता है। जब उद्दीपक के मान को घटाना रहता है तब उस उद्दीपक को एक ऐसे मान से शुरू किया जाता है जिसका प्रत्यक्षण स्पष्ट रूप से प्रयोज्य को होता है। इसके बाद उद्दीपक के मान में अल्पमत परिवर्तन करके तब तक घटाया जाता है जब तक कि प्रयोज्य अपना उत्तर न बदल दे। इसे अवरोही श्रृंखला कहा जाता है। अवरोही श्रृंखला के बाद आरोही श्रृंखला शुरू की जाती है जहां व्यक्ति को उद्दीपक के मान में अल्पमत परिवर्तन करते हुए तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि प्रयोज्य अपना उत्तर न बदल दे, अर्थात जब तक प्रयोज्य को उसका स्पष्ट प्रत्यक्षण न हो जाता है। चूंकि इस विधि में प्रत्येक बार उद्दीपक के मान में अल्पमत परिवर्तन किया जाता है, इसलिए इस विधि को अल्पमत परिवर्तन विधि की संज्ञा गिल्फोय 1954 द्वारा दी गई है। कई प्रयासों तक आरोही तथा अवरोही श्रृंखला में आंकड़े लिए जाते हैं और दोनों श्रृंखलाओं का माध्य RL कहलाता है। DL ज्ञात करने के लिए भी उसी तरह से आंकड़े आरोही श्रृंखला तथा अवरोही श्रृंखला में लिए जाते हैं। यहाँ मानक उद्दीपक को तथा परिवर्त्य उद्दीपक में अल्पमत अंतर करके फिर दोनों उद्दीपकों को प्रयोज्य के सामने कई प्रयासों तक दिया जाता है। ये दोनों उद्दीपक एक साथ भी दिए जा सकते हैं या बारी बारी से भी दिए जा सकते हैं। आरोही श्रृंखला में परिवर्त्य उद्दीपक को मानक उद्दीपक से काफ़ी छोटा या कम रखा जाता है और इसके बाद में अल्पमत परिवर्तन करते हुए इस तक तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि प्रयोज्य अपना उत्तर न बदल दे, अर्थात वह यह न कह दे कि अब परिवर्त्य उद्दीपक मानक उद्दीपक से छोटा ना होकर बड़ा है। उसी तरह से अवरोही श्रृंखला में परिवर्त्य उद्दीपक को मानक उद्दीपक से काफ़ी बड़ा रखा जाता है और इसमें अल्पमत परिवर्तन करते हुए उसे तब तक घटाया जाता है जब तक कि प्रयोज्य अपना उत्तर बदल ना दे, अर्थात इस परिवर्त्य उद्दीपक से बड़ा ना लगकर उससे छोटा लगने लगे। इन दोनों सीमाओं के बीच में प्रयोज्य एक और अनुक्रिया करता पाया जाता है। इसमें वह परिवर्त्य उद्दीपक को मानक उद्दीपक के बराबर समझता है। इस तरह के अनुक्रिया के प्रसार को अनिश्चितता का अंतराल इंटरवल ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जाता है, जिसका आधा अर्थात 1.5 को DL कहा जाता है। DL इज इक्वल टू IU/2। चाहे RL ज्ञात किया जा रहा हो या DL, सीमा विधि से अध्ययन करने में दो तरह की त्रुटियाँ होती हैं जिन्हें प्रत्याशा त्रुटि तथा अभ्यसन त्रुटि की संज्ञा दी जाती है। जब आरोही श्रृंखला का माध्य अवरोही श्रृंखला का माध्य से ज़्यादा होता है तब समझा जाता है कि प्रयोज्य में अभ्यसन त्रुटि हो रही है, परंतु जब अवरोही श्रृंखला का माध्य आरोही श्रृंखला के माध्य से ज़्यादा होता है तब समझा जाता है कि प्रयोज्य में प्रत्याशा त्रुटि हो रही है।